परीक्षा लेक्चर नंबर 5 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं त्रिभुवन तिलकं देवं वंदित्वा त्रिभुवनेन्द्रपरिपूज्यं वक्षे अनुप्रेक्षा भविकजनानन्दजननी। यह कार्तिक के स्वामी के द्वारा रचित जो कार्तिक अनुप्रेक्षा है उसके ऊपर जो गुरुदेव के प्रवचन हुए हैं उस कार्तिकेय अनुप्रेक्षा प्रवचन के पृष्ठ क्रमांक 16 पर आए हैं। हमने देखा था कि अनुप्रेक्षा का अर्थ ही भावना है, अनुप्रेक्षा का अर्थ ही बारंबार चिंतवन करना है। किसका चिंतवन करना है तो कहते हैं अपने स्वभाव का, अपने स्वरूप का चिंतवन करना है, और वह चिंतवन 12 प्रकार से मुख्यतः हो सकता है, इसलिए इसको 12 भावना की है, यानी 12 प्रकार से उस बारे में चिंतन करते करते अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाना, इसलिए यह भावनाएं तो मुख्यतया मुनिराज ही भाते हैं, क्योंकि यह तो वैराग्य जननी है और आनंद जननी है। वैराग्य यानी दुखी होना ऐसा नहीं, वैराग्य यानी आपने बताया ना वीतरागता होना, तो इसलिए हमने कल तक 6 भावनाएं देखी। कौन कौन सी देखी याद है किसको? हाँ कौन बताएगा? आप बताएंगे? वहां 2 हाथ उठ गए। वीरेश भाई बोलते हमको कोई पूछता ही नहीं है। बोलो बोलो बोलो। हाँ अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व और अशुचित्व, ये 6 भावनाओं का हमने इन शॉर्ट स्वरूप देखा था। आज कौन सी देखने जा रहे हैं साहब? शाबाश। और अधर्म धर्म, अच्छा कोई बात नहीं। देखो देखो क्या कहना चाहते हैं। देखो लड़का एकदम तैयार हो गया, सब रट रट के बराबर याद किया, बहुत अच्छा। कल जो गलती की थी वो भी सुधार दी, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कौन कौन से आश्रव संवर निर्जरा और कौन सा रह गया, लोक बोधि दुर्लभ और धर्म, ये भावनाएं अभी हम उसके बारे में जानना चाहेंगे और वो हम इसके तरफ से देखेंगे। अभी यहाँ 16 पृष्ठ पर 7 नंबर का जो पॉइंट है वहाँ क्या लिखते हैं, कर्मनु आवु ते आश्रव छे सम्यक दृष्टि विचारे छे क्या हो। यहाँ सम्यक दृष्टि की ही बात क्यों ली है? इसका कारण यह है कि यह भावना सच्ची रीत से यथार्थतया धर्मी जीव कहो या सम्यक दृष्टि जीव ही भाता है, इसके लिए मिथ्या दृष्टि को भाने को मना नहीं है, लेकिन वो उसका सही यथार्थ अर्थ नहीं जानता है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि विचारे छे के अहो मारा चिदानंद स्वभाव मा कर्मनी उपाधि नथी, जे व्रतादि नी शुभ वृत्ति उठे छे ते पन कर्मना आश्रव नु कारण छे। केम के कहते के शुभ भाव छे भाई, तो शुभ भावना कारणे कहे छे कि ई पन आश्रव छे। क्या कहा? जे व्रतादिनी शुभ वृत्ति उठे ते पन કર્મના આશ્રવનું કારણ છે, તે મારું સ્વરૂપ નથી. મારા જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપની ભાવનામાં કર્મનો આશ્રવ થતો નથી. ક્યા કહા? દેખો, કઈ લોગો કા એસા માનના હૈ કે શુભ ભાવ સે હી ધર્મ હોતા હૈ, તો યહાં આશ્રવ ભાવના કે દ્વારા યહ બાત બિલકુલ ક્લીન ક્લિયર હો જાતી હૈ કે યહ જો ભાવ હૈ કૌન સે શુભ ભાવ, વ્રતાદિ કે જે શુભ ભાવ હૈ વે કૈસે હૈ, આશ્રવ કે કારણ હૈ, કર્મ કો બાંધને કે કારણ હૈ. और समकिति क्या कहते हैं, ये मेरे स्वभाव में ये कर्म की उपाधि वगैरह कुछ नहीं, कर्म मेरे स्वभाव में है ही नहीं. और मैं कहा कैसा हूँ, ज्ञान और आनंद स्वरूप हूँ, और उसमें मैं भाव भाव क्या कहते हैं, उसमें मैं लीन हो जाऊं, उसमें भवन करूं, तो मुझे कर्म का बंध भी नहीं होगा. अभी कहते हैं कर्म ना आश्रव ने रोकवो संवर छे, यह तो द्रव्य आश्रव और द्रव्य संवर की बात की. हाँ जी, पहले द्रव्य आश्रव सातवें में, अभी द्रव्य संवर की. ये द्रव्य आश्रव और द्रव्य संवर नहीं समझे आप समझ गए कि नहीं? कोई बात नहीं, हमारे सौभाग चंद जी समझे कि नहीं? हाँ, कर्म का आना, आश्रव यानी श्रवना, कर्म का आना, कर्म का निर्मित हो जाना, और द्रव्य संवर यानी क्या होना है, कर्म का रुक जाना, कर्म का आना रुकना. ये हम छह क्या कहते हैं, सात तत्व की बात जब देखेंगे तो ये बात विशेष रूप से आपको ख्याल में आएगी. अभी तो ये बात है कि देखो फिर भाव संवर क्या होना चाहिए. अश्विन भाई आप जानते हैं? हाँ, स्वरूप में लीनता, या तो हम तत्व की भाषा में कहें जो हमने सीखा है कि शुद्धि की उत्पत्ति यानी स्वरूप में लीनता, तभी तो शुद्धि की उत्पत्ति होगी. वो क्या होगा? भाव संवर. और भाव आश्रव यानी क्या? हाँ मनु, हाँ, शुभाशुभ मोह राग द्वेष के परिणाम जो है वह भाव आश्रव है. अब आगे बढ़ते हैं, जरा पुरानी बात हम याद करेंगे ना तो ये समझने में आसान होगा. कर्मना आश्रव ने रोकवो ते संवर छे, खरेखर कर्म ने रोकवा ते उपचार नु कथन छे. कोई कर्म को रोक ही नहीं सकता है और ला भी नहीं सकता है, बांध भी नहीं सकता और छोड़ भी नहीं सकता है, लेकिन वो तो ऐसा कहेंगे उपचार से. तो क्या कह रहे हैं, चिदानंद स्वरूप में एकाग्र रहता कर्म अवताज नथी, ते आव्या योग्य हता ने अटकाव्या एम पण नथी, पण ते आव्या योग्य ज नहता. लेकिन यह जीव अपने स्वरूप में एकाग्र हुआ है और उनकी आने की योग्यता ही नहीं थी, दोनों बात एक समय में हो रही है, तो इस जीव ने उनको रुकाया ऐसा भी नहीं है. क्या कहा? देखो बहुत अच्छा पॉइंट बताया उन्होंने कि कर्म की आने की वहां योग्यता ही थी नहीं ना, और यहां जीव का स्वरूप में एकाग्र हो जाना वो बात बन गई. उससे क्या हो गया, ये क्या बताना चाहते हैं, ना कर्म को हम ला सकते हैं, ना कर्म को छोड़ सकते हैं, ना कर्म को बांध सकते हैं, ना कर्म की निर्जरा कर सकते हैं. तो हमने तो देखा कर्म का आना वह द्रव्य आश्रव है, और कर्म का आना रोक देना या रुक जाना, तो रुक जाना यानी कर्म स्वयं अपने कारण से रुके हुए हैं, वो तो अपनी योग्यता से, और यहाँ जीव अपने स्वरूप में एकाग्र हुआ है, दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है. क्या कहा देखो, सेकंड लाइन में पढ़ता हूँ, पण चिदानंद स्वरूप मां एकाग्र रहता कर्म आवताज नथी, ते आवा हता ने अटकाव्या एम नथी, पण ते आववा योग्य ज नहता. चिदानंद स्वरूपनी भावनामा एकाग्र रहता रागनी उत्पत्ति ज थती नथी, तेनु नाम संवर छे. ये भाव संवर की बात कही। अभी कहते हैं नौवां पॉइंट, कर्मनु अटकमु ते निर्जरा छे, शुद्ध चैतन्य स्वरूप ना आश्रय एकाग्र थता, शुद्धता वधवी ने अशुद्धता टळवी, तथा कर्म खरी जवा तेनु नाम निर्जरा छे। इसमें क्या क्या बातें बताई, ख्याल में आई? कितनी बातें बताई वीरेश भाई? हाँ नहीं नहीं, नंबर चाहिए मुझको। कितनी बातें बताई इसमें निर्जरा में, कितनी बातें बताई? तीन। कौन कौन सी? हाँ कितने? चार। बोलो बोलो कौन सी चार? ऐसा नहीं है। देखो देखो देखो, ये क्या कार्य हुआ? एकाग्रता हुई। उस एकाग्रता के समय में कौन कौन सी बात बनी? शुद्धता वधी। तो एकाग्रता थई एटले शुद्धता वधी ने बेटा। हाँ अने एमा शुं थयुं? अशुद्धता टळी। अशुद्धता टळी अने क्या हुआ? हाँ बोलो बोलो। हाँ बरोबर, राग द्वेष चल रहे थे ना, वो बंद ही हो गए, तो अशुद्धता टली, मलिनता नहीं रही, शुद्धता बढ़ी। अब आगे क्या कहते हैं? अने कर्म खरी गया, जो पुराना कर्म हता, पहला बांधेला कर्म हता, ये खरी गया। त्रण वातो थई, एनु नाम निर्जरा छे। एकाकार अभेद द्रव्य नी दृष्टि राखीने आ बधी भावनानु वर्णन छे। जो आ बार भावनामां पण अलौकिक वितरागता छे। महाअलौकिक अध्यात्म शास्त्रो समयसार प्रवचनसार नियमसार ने पंचासी कायना वांचन पछी आ बार भावनानु शास्त्र वंचाय छे, तेमा संधि छे। ये तो सहज योग आ गया भाई। हम तो चाहते थे अष्टपहुट पढ़ना, और यहाँ गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ये पहले चार ही पांच ही हमने समयसार पहले पढ़ा, प्रवचनसार नहीं, पहले हमने नियमसार पढ़ा, बाद में प्रवचन सार पढ़ा। क्या दोनों साइमल्टेनियसली चालू किए थे? हाँ जी, पंचास्ती काय पढ़ लिया, यानी कोई भी हो ये चार तो पढ़ लिए। समय सार तो दो बार पढ़ रहे हैं, और बाद में पछी आ बार भावना नु शास्त्र वंचाय छे, तेमा संधि छे, एटले देर इज अ कनेक्शन इन बिटवीन। जेने बार भावना रुचती नथी तेने खरेखर अध्यात्मनु भान नथी। तीर्थंकरो पण आ बार भावना भावे छे। जा अंतरना अखंड स्वभावनी दृष्टि थई त्या आवी वैराग्य भावनाओ होय छे, तेमज भूमिका अनुसार पूजा भक्ति स्वाध्याय वगैरे नो शुभ भाव पण होय छे। ते शुभराग ने धर्म नहीं, ते शुभराग ने धर्म नथी मानता, पण भक्ति वगैरे नो शुभराग आव्या विना रहेतो नथी। जे भूमिकाए जे दशा होय तेने विवेक होवो जोईए। क्या कहना चाहते, समझ में आया? ये समझा रहे हैं वो जो मुनि सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो शुभराग को धर्म तो मानते नहीं, लेकिन उनको भूमिका के अनुसार शुभराग आए बिना नहीं रहता है। यानी क्या? भूमिका के अनुसार शुभराग आए बिना नहीं रहता है। इसका अर्थ क्या लेना जानती है? हाँ बोलो बोलो। हाँ तो कौन से गुणस्थान में कौन से शुभ भाव आएंगे? कोई बात नहीं, शांति से सुनो। हाँ हाँ, जय बेन आप जानती हैं? हाँ, मुनियों को पांच महाव्रत आदि पालने के, 28 मूलगुण पालने के शुभ भाव रहते हैं। और ये मुनि की बात हुई, भूमिका अनुसार कहा ना। हाँ, और तो मुनिराज भी पूजा भक्ति करेंगे कि नहीं करेंगे? एक ही है, वंदन तो करने जाएंगे ना। हाँ, वो अपने लिए भाव पूजा, भाव पूजा तो एक्चुअली स्वरूप में लीनता है, ठीक 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 हाँ, और हाँ बोलो, आप बोलो। हाँ, पांचवे गुण स्थान वर्ती जीव अनुव्रत आदि का पालन करेंगे और प्रतिमा के अनुसार उनके व्यवहार भी रहेगा, शुभ राग रहेगा। और चौथे गुण स्थान वर्ती जीव के सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति जो राग परिणाम है वो उनको आएगा, ये भूमिका अनुसार उनके राग के परिणाम होंगे। तो वही यहाँ बता रहे हैं। जे भूमिकाएं जे दशा होए तेनो विवेक होवो जोइए, यानी हम कौन से गुणस्थान में है इसकी पहचान उस जीव को चाहिए, नहीं तो कोई अभी मिथ्या दृष्टि है, बाहर में पंचव्रत महाव्रत आदि पालन करे और अपने को मुनि माने तो उसको वह विवेकशील नहीं है, ऐसा बता रहे। बात तो ऐसी ही होती है, पहले गुणस्थान में कोई जीव होगा और वो अनुव्रत आदि अपना महाव्रत आदि पालन करता है, फिर भी उस समय अभी भी मुझे मुनि अवस्था प्राप्त नहीं है, फिर भी उसके शुभ राग आए तो उसमें कोई चिंता नहीं, लेकिन मान्यता ये हो जाए कि नहीं मैं तो मुनि हो गया तो गड़बड़ हो जाए। नित्य चैतन्य स्वभावनी भावना पूर्वक शुद्धिनी वृद्धि थाय अने कर्म खरे तेने निर्जरा कहे छे, सामान्यपने कर्मना परमाणु तो बधाय जीवो ने समय समय खरे छे। ये तो आपको मालूम है ना कि एक समय में कितने कर्म खिरते हैं सुशीला बेन। हाँ, उसका क्या नाम है जया बेन, आप जानती हैं? एक समय प्रबद्ध, तो एक समय प्रबद्ध में कितने होते साहब? एक समय प्रबंध में परमाणु कितने होंगे तो वो कौन बोलेगा, इतना टाइम लगता है। कोई बात नहीं, नहीं 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 नहीं, अब वो वास्तव में ऐसी बात है, अनंत वर्ग जो है उनकी जो वर्गणाएं हैं वो भी अनंत होती है। अब ये गणित अब यहाँ इसका विषय नहीं है, लेकिन वो बात ध्यान रखना कि यहाँ अनंत कहते तो अनंतानंत ही होते हैं, हम कहे भले अनंत तो क्या कह रहे हैं देखो देखो, सामान्यपने यानी वो कौन सा जीव लेना, निगोद से लेकर कोई भी आगे, सिद्ध को भी लेना कि नहीं, क्यों नहीं? अरे वाह, सिद्धों को कोई कर्म ही नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं ऐसा कहती है। सामान्यपने कर्मना परमाणु तो बधाय जीवों ने समय समय खरे छे ते विपाक निर्जरा छे, इसको ही सविपाक निर्जरा कहेंगे। तेमा काई धर्म नथी, द्रव्यलिंगी साधु पुण्यमा धर्म मानतो होए तेने पन पूर्वना कर्मो खरे छे, पन साथे मिथ्यात्वना अनंत कर्मो नवा बंधाय छे, तेने खरेखर निर्जरा न कहवाय। आज ही फोन आया था गुजरात से किसी भाई का, उन्होंने स्वविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा की बात पूछना चालू किया और इतना घोटाला कर रहे थे वो आपस में अंदर अंदर, आधे घंटे बाद चली और अपना अभी 320 गाथा वहां पर चल रही, अपने यहां भी 320 चल रही और वो वहां सिखाते हैं और उनको वहां प्रश्न पूछने में आए तो वो गड़बड़ी गए, तो उन्होंने यहां फोन करके पूछा। चलो आगे, छ द्रव्यों नो समुदाय ते लोक छे, छ द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, लोक कहते हैं ना। हूँ छ द्रव्यों नो ज्ञाता छू, एम ज्ञाननी भावना पूर्वक छ द्रव्य ने जानवा ते लोक भावना छे। क्या कहा अभी यहाँ, ये जो है ना लोक भावना, यहाँ तो डेढ़ लाइन में उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन आगे जब आएंगे तो उसकी इतनी गाथाएं हैं कि पूछो मत। क्या कहा यहां, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, छह द्रव्यों नो हूं ज्ञाता छू, ये बात नक्की रहनी चाहिए। इसलिए इस तरह से ज्ञाननी भावना पूर्वक छ મુખ્ય દ્રવ્યને જાણવા તે લોક ભાવના છે. અતિ આગે કા બોધિ દુર્લભ, અતિ દુર્લભતાથી જેની પ્રાપ્તિ થાય. કોની અતિ દુર્લભતાથી પ્રાપ્તિ થાય? પૈસાની. હે, હા, સ્વસ્વભાવની, સ્વસ્વરૂપની. તો શું કહે છે? અતિ દુર્લભતાથી જેની પ્રાપ્તિ થાય તે બોધિ દુર્લભ છે. આ જગતમાં જીવને બોધિ જ મહા દુર્લભ છે. બોધિ અને આત્માનું, આત્મા કા જ્ઞાન કહો. બોધિ એટલે લિખા ના ભાઈ, સાચી સમજણ. સાચી સમજણ કિસકો કહેંગે? કે જો યથાર્થ વસ્તુ કા સ્વરૂપ હૈ, મેં જીવ હું ઓર જ્ઞાન સ્વભાવી હું, એસી નક્કી સમજણ હો જાય. યાની સમજણ મેં દોનો લેના, શ્રદ્ધા ઓર જ્ઞાન. તો કહેતે એ દુર્લભ બોધિ છે, અને એ જ આ જીવને મહાદુર્લભ છે. તે જીવને અનંતકાળમાં મહાદુર્લભ છે. જો સમ્યક દ્રષ્ટિ આવી સમ્યક દર્શનાદિની દુર્લભતાની ભાવના કરે છે, યાને એવો બહુ દુર્લભ હૈ, દુર્લભ કે કંટાલ નહીં જાતા હૈ, તો અધિક પાવરફુલી ઉસમે પ્રયત્ન કરેગા ઓર સ્વરૂપ કો પ્રાપ્ત કરેગા. સ્વર્ગાદિનો ભાવ પામવો તે કાંઈ ખરેખર દુર્લભ નથી. તે તો અનંત વાર મળી ગયા, પણ ચૈતન્ય સ્વભાવના જ્ઞાન, શ્રદ્ધા જ્ઞાન રમણતા તે જ જીવને ખરેખર દુર્લભ છે. એ તો એક રેશિયો તો આપકો માલુમ હોગા ને, ઉપર જો લિખા ને ભાઈ કે સ્વર્ગાદિનો ભાવ પામવો તે કાંઈ દુર્લભ નથી. કેમ? એ તો અનંત વાર મળી ગયા છે. તો એસા કહેતે હૈ કે અનાદિકાલ સે ઇસ જીવને મનુષ્ય પર્યાય જો અનંતવાર પ્રાપ્ત કિયે, યાને વાસ્તવમાં એસા હોતા હૈ કે 2000 સાગર મેં કુછ હી ગિને ચુને મનુષ્ય ભાવ મિલતે હૈ, પર્યાપ્ત મનુષ્ય ભાવ. અપર્યાપ્ત કી બાત યહાં લી નહીં હૈ. તો વહ ભી 2000 સાગર વર્ષ મેં અગર કોઈ જીવ અપને આત્મા કા અનુભવ નહીં કરેગા તો નિયમ સે વહ પિયર ચલા જાતા હૈ. પિયર યાને સમજતે આપ? મેકે મેકે. તો વહા જાવે તો વહા ન માલુમ કિતના કાલ ગવાય, આનંદ કાલ ભી જાવે. તો એસા કાલ બિતાતે બિતાતે ઇસ જીવને અનંત બાર મનુષ્ય પર્યાય મિલાય. ઓર જીતની બાર મનુષ્ય પર્યાય કી પ્રાપ્તિ કે અનાદિ સે, ઉસસે ભી અસંખ્યાત બાર નરક પ્રાપ્ત કિયા. નરક કી ગતિ મતલબ નરક કા ભવ ભોગા હૈ, સ્વર્ગ કી પ્રાપ્તિ નરક કી પ્રાપ્તિ. ઓર યે કિતના હો ગયા? અનંત ઇન્ટુ અસંખ્યાત. તો ઇતને બાર તો નરક બાર નરક મેં ગયા, ઓર ઉસસે અસંખ્ય બાર સ્વર્ગ મેં ગયા. તો યે ક્યા લિખા? તો આપ તો અસંખ્ય બોલ રહે હો, યહાં તો અનંત લિખા હૈ. તુમ ઝૂઠ બોલતે હો? નહીં, આપ સમજ નહીં રહે હો. પહેલે અનંત કો અસંખ્યાત સે ગુનો, ફિર અનંત મલ્ટીપ્લાય બાય અસંખ્ય મલ્ટીપ્લાય બાય અસંખ્ય, કિતના ગુણાકાર આયેગા? અનંત. અનંત અનંત યાને ક્યા? અસંખ્યાત અસંખ્યાત અનંત. અનંત તો હૈ, યે ગુરુદેવ કહે રહે ના કે તે તો અનંત વાર મળી ગયા. તો આજે તમારે જે શુભભાવ કર્યા છે એમ કે છે, એ તો એમી એમાં કઈ દુર્લભતા નથી, એ તો અનંતવાર કર્યા છે. ઉત્કૃષ્ટ મેં ઉત્કૃષ્ટ શુભભાવ કોણ સા હોગા? તો કહેતે હૈ કે દ્રવ્યલિંગી મુનિ હોકર પંચમહાવ્રત આદિ કા પાલન કરકે એકદમ શુક્લ લિશા મેં પૂરા જિંદગી બિતાએ, ઓર ફિર મિથ્યાત્વ કે સાથે નવે ગ્રહવેગ મેં જાવે. ખ્યાલ મેં? તો યે કહે રહે કે યે કોઈ નઈ બાત નહીં હૈ, યે તો તુને અનંત બહાર કિયા હૈ. યે આત્મા કા અનુભવ કરના હી મહા દુર્લભ હૈ, ઇસલિએ બોધિ દુર્લભ ભાવના કહીયો. તો ક્યા કહા? સ્વર્ગાદિનો ભાવ પામવો તે કાંઈ ખરેખર દુર્લભ નથી, તે તો અનંત વાર મળી ગયા, પણ ચૈતન્ય સ્વભાવના શ્રદ્ધા જ્ઞાન રમણતા તે જ જીવને ખરેખર દુર્લભ છે. સંસારથી જીવનો ઉદ્ધાર કરે તેનું નામ ધર્મ છે. યાને અભી ગુજરાતીમાં એસા શબ્દ હૈ, મુજે ખ્યાલ મેરે લગતા હૈ કે સંસારથી, સંસાર સમુદ્રમાંથી ઉગારે, ઉગારે હૈ ને શબ્દ, હા, ઉગારે અને બહાર નીકાળે ને, તે શું છે? તે ધર્મ છે. વસ્તુ સ્વરૂપ તે ધર્મ છે. વસ્તુ સ્વભાવો ધમ્મો લખા ને, ચૈતન્ય સ્વરૂપનું ભાન કરીને તેમાં એકાગ્ર થતા જીવને જન્મ મરણનો અભાવ થઈને મુક્ત દશા થઈ જાય છે. આવી ધર્મ ભાવના છે. આ પ્રમાણે 12 ભાવના ટૂંકામાં વર્ણવી હવે એક એક ભાવના વિસ્તારથી વર્ણવે છે. હવે પ્રથમ અધ્રુવાનું પ્રેક્ષા કહે છે. અધ્રુવ કા દૂસરા અર્થ કોણ સા દેખાતા અમને? હાજી, અનિત્ય ભાવના. ચલો બહુ અચ્છા, તો અભી હમ પઢતે હૈ યે. હા પ્રાકૃત, હા જરૂર જરૂર.
જમ કિંચિ વિઉપપન્નમ તસ્સ વિનાશો હવે ઇણિયમેણ પરિણામ સ્વરૂપેણ વિનય કિંચિ વિશાશયમ અથિ. સંસ્કૃત. યત કિમપિ ઉત્પન્નમ તસ્ય વિનાશો ભવતિ નિયમેન પરિણામ સ્વરૂપેણ ન ચ કિમપિ શાશ્વતમ અસ્તિ. અન્વયાર્થ દેખતે હૈ. જમ કિંચિ વિ ઉત્પન્નમ યને જો કુછ ભી ઉત્પન્ન હુઆ હૈ તસ્ય નિયમેન વિનાશો હવેઈ. उसका नियम से नाश होता है. परिणाम स्वरूपेण भी, परिणाम स्वरूप से तो किंच भी साशयम न अति, कुछ भी नित्य नहीं है. क्या कहना चाहते हैं? जो उत्पन्न होता है उसका नाश होता है. उत्पाद व्यय ना, तो उत्पाद किसका होता है? हाँ, पर्याय रूप से द्रव्य का कहो या पर्याय का कहो, एक ही बात है ना. तो उत्पन्न होता है उसका नाश है, परंतु नित्य है उसका नाश नहीं होता. ये बात यहां बताना चाहते हैं. परिणाम स्वरूप थे, पर्याय रूप से कोई भी शाश्वत नहीं है. पर्याय रूप से विनाश होता है, द्रव्य रूप से शाश्वत रहता है. ये बात यहां खास बतानी जैसी है. अब उसका भावार्थ यहां गुजराती में पढ़ेंगे. जे कहीं उत्पन्न थयू તેનો નિયમથી નાશ થાય છે. અર્થાત પરિણામ સ્વરૂપથી તો કોઈ પણ વસ્તુ શાશ્વત નથી. એ જો ક્ષણિકવાદ કહેતે હૈ વો તો સર્વથા ક્ષણિક કહેતે હૈ. વસ્તુ ક્ષણિક હૈ, યાની વસ્તુ નહીં ઉત્પન્ન હોતી ઓર વસ્તુ નષ્ટ હોતી એસા માનતે હૈ. પરંતુ યહાં ક્યા શબ્દ ડાલા? પરિણામ સ્વરૂપથી. એક શબ્દ સે ક્યા હુઆ? અન્ય મતિ કા નિરાકરણ હો ગયા. ये यहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बार बार ऐसी बहुत सारी गाथाएं हैं कि उसके अपने स्वरूप का तो प्रतिपादन करते हैं अब जैन मत का, और अन्य मत का उसी एक शब्द के द्वारा खंडन हो जाता है. जहाँ जो बात आएगी वो बताएंगे आगे. भावार्थ. सर्व वस्तु सामान्य विशेष स्वरूप छे. त्या सामान्य तो द्रव्य ने कहेवामां आवे छे, तथा विशेष ગુણ પર્યાય ને કહેવામાં આવે છે. ક્યાં કહેતે? સામાન્ય અને વહી કા વહી કા જો કાયમ રહેતા હૈ ઉસકો હમ સામાન્ય કહેંગે. કોઈ ભેદ પાડે બિના ઉસકો ક્યા કહેંગે? સામાન્ય. ઓર ઉસમે અગર હમ ભેદ કરતે હૈ ગુણો કા ભેદ યા પર્યાયો કા ભેદ, તો ઉસકો કહેતે વિશેષ. હવે દ્રવ્ય થી તો વસ્તુ નિત્ય જ છે, ગુણ પણ નિત્ય જ છે, અને પર્યાય છે તે અનિત્ય છે. તેને પરિણામ પણ કહેવામાં આવે છે. પર્યાય કહો પરિણામ કહો એક હી બાત હૈ. અવસ્થા કહો દશા કહો હાલત કહો. આ જીવ પર્યાય બુદ્ધિ વાળો હોવાથી પર્યાય બુદ્ધિ વાળો કિસકો કહેના? હા અમોલ, હા પર્યાય હૈ તો વો જાનેગા કે નહીં જાનેગા? પર્યાય બુદ્ધિ કિસકો કહેના? બોલો. હાં, બુદ્ધિ અને વો માન્યતા ઉસકી દર્શાતે હૈ. પર્યાય જીતના અપને કો માનને વાલા ઉસકો કહેતે હૈ પર્યાય બુદ્ધિ વાલા. પર્યાય મેં જો કુછ જ્ઞાન કી હીનતા હો રહી હૈ, કોઈ જો અન્ય મનુષ્ય પર્યાય રૂપ સે હૈ, તો ઉતના હી મેં હું એસા વો માનતા હૈ, ઉસકો કહેતે હૈ પર્યાય બુદ્ધિ વાલા. પર્યાય કો જાનને વાલા પર્યાય બુદ્ધિ વાલા નહીં કહેલાતા. पर्याय को तो सभी जानेंगे ना, समय दृष्टि भी पर्याय को तो जानेगा कि केवल ज्ञानी पर्याय को नहीं जानते, स्व पर सबके पर्याय को जानते हैं। जानने की बात नहीं यहाँ पर, यहाँ मानने की बात है कि पर्याय बुद्धि वाले ने पर्याय जितना ही अपने को मानता है, तो कहते आजीव पर्याय बुद्धि वालों हुआ थी, ये उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं होती। अनादि से ही जिस पर्याय में हमने 14 जीव समाज देखे अभी देवलाली में, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी पर्याय में उत्पन्न हुआ, तो वहां अपने को उस रूप मान लेता है, इसको कहेंगे पर्याय बुद्धि वाला। हुआ थी पर्याय ने उपजती विनस्ती देखी ने हर्ष शोक करे छे। कोई पर्याय उत्पन्न होती है और कोई विनाश होती है, तो यहाँ वो अपने रोता है, कभी हंसता है। तथा यानी यहाँ तो भव को भी पर्याय कहा और विशिष्ट लंबे समय वाली पर्याय उसको भी पर्याय कहेंगे हम। जैसे अभी ये युवान है, अभी युवानपना का नाश हुआ और वृद्धावस्था प्राप्त हुई तो रोने लगा, है ना, क्योंकि अपने को उस रूप माना था उसने। तो उपस्थिति विनस्ती देखी ने हर्ष शोक करे छे, अपने ही नहीं अन्य की पर्याय भी, अभी जो सोने की पर्याय है, बच्चे की पर्याय, कोई भी अन्य पर्याय है, उसको भी कायम रखना चाहता है। और उसका विनाश होते ही उसको जो अनुकूल फेवरेबल लगे, वो तो उत्पन्न होते तो हर्ष मानता है और उसका विनाश होता है तो दुख मान जाता है। तथा तेने नित्य राखवा इच्छे छे, अने ए अज्ञान वड़े ते व्याकुल थाय छे। टेंशन काय काय कि पर्यायों को कायम रखना चाहता है और ये पर्याय तो इसके इच्छा अनुसार परिणमती नहीं है, वो तो जो द्रव्य में जो पर्याय जब होनी है तब होती है, जैसी होनी है वैसी ही होती है। तो अपने को ये तो अपनी पर्याय की छोड़ो, शरीर रूप अपने को मान लेता है और फिर वो शरीर की कुछ विशिष्ट अवस्थाएं भी करना चाहता है। संयोग रूप अपने को मानता है, संयोग से मैं बड़ा हूँ मानता है और संयोगों में विशिष्ट बातें चाहता है, और इसकी इच्छा अनुसार नहीं होते संयोग और शरीर की अवस्थाएं, तो आकुल व्याकुल हो जाता है। तेथी तेने आ भावना एटले अनुप्रेक्षा चिंतवी योग्य छे, यानी ये संयोगों को कायम रखना चाहता है, परंतु इसको ऐसा विचारना चाहिए, विचार करना चाहिए, जिसका संयोग है उसका वियोग भी है और जो उत्पन्न होती है उसका विनाश भी है। यदि ये वस्तु स्वरूप, यहाँ तो सभी भावना जो है वस्तु स्वरूप का चिंतन है, वस्तु स्वरूप उसमें परिणमन व्यवस्था है, जो कुछ है आश्रव संबंधी संबंधी निजरा संबंधी, जो कुछ जैसा स्वरूप है वैसा निर्णय करना और अपने आत्मा का अवलंबन लेना। एकाग्र तो अपने में होना है, परंतु जो उपयोग की एकाग्रता, इस चिंतन में भी उपयोग की एकाग्रता होती है और वहाँ आत्मा के अवलंबन की मुख्यता है, तो किसी एक विषय पर उपयोग टिका रहे ना, उसको यहाँ ध्यान भी कहते हैं, उसको यहाँ अनुप्रेक्षा भी कहते हैं, तो उस अपेक्षा से यहाँ इसका अर्थ लेना चाहिए। भावार्थ इतना ही है ना क्या? ये भी नीचे का भी है। हाँ, हूँ द्रव्य थी तो शाश्वत आत्मद्रव्य छू, आ उपजे छे विनसे छे ते पर्याय नो स्वभाव छे। देखो ये तो जयचंद जी ने जो 12 भावनाएं लिखी है, कहाँ लिखी है याद है, पढ़ी है हमने, किसी शास्त्र का यहाँ अभ्यास हुआ था, उसके हर चैप्टर के पीछे उन्होंने एक एक भावना लिखी थी। जयचंद जी ये द्रव्य दृष्टि से सब थी रहे पर्याय थी रहे,
वो तो इसमें वितराग विज्ञान में,
वितराग विज्ञान तो इकट्ठा करके लिखी है, इसमें लिखी है ना, वो तो द्रव्य संग्रह में लिखी है, कहाँ लिखी है, शायद द्रव्य संग्रह में, हर चैप्टर के अंत में एक एक भावना लिखी है उन्होंने और उसका संकलन करके वितराग विज्ञान वो पाठमाला में लिखी है। यानी यहाँ तो अध्रुव की बात है और वहां उन्होंने ऐसा उठाया है कि द्रव्य दृष्टि से तो सभी स्थिर है और पर्याय दृष्टि से अस्थिर है, यानी पर्याय की ओर देख देख दिया, अस्थिर भावना कुछ दुख उत्पन्न है, अध्रुव है, सब कुछ अध्रुव है, अरे अरे क्या करे, सब कुछ अध्रुव है, ये रोने की बात नहीं है। तो मैं तो या द्रव्य दृष्टि तो सब कुछ स्थिर है और पर्याय दृष्टि से अस्थिर है, तो द्रव्य दृष्टि आप आलखो, यानी अपने आप को द्रव्य दृष्टि से देखो, तो वो तो आनंद ही आनंद है।
परजय करी गौण,
द्रव्य दृष्टि आप आलखो, परजय नय करी गौण। तो पर्याय जो दृष्टि है उसको गौण करके द्रव्य दृष्टि से अपने आप को देखो, ऐसा वहां उपदेश भी दिया उन्होंने। यह क्या कहते हैं, हूँ द्रव्य थी तो शाश्वत आत्म द्रव्य छू, यहाँ भी लिया ना, कौन सी भावना भार है, अध्रुव भावना। और पहले में पहले क्या कहा कि मैं तो द्रव्य थी शाश्वत आत्म द्रव्य हूँ, आ उपजे छे विनसे छे ते पर्याय नो स्वभाव छे तेमा हर्ष विषाद छो। जो जिसका स्वभाव है उसमें दुख मानने का कारण क्या है, वो तो पर्याय का स्वभाव ही है, वो अनित्य ही होती है, एक समय मात्र टिकती है। शरीर छे ते जीव अने पुद्गलना संयोग जनित पर्याय छे, उस पर्याय को कौन सी पर्याय कहते हैं, हाँ सुशीला बेन क्या कहा, हाँ 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 नहीं आएगा आएगा, हाँ देखो क्या कहा यहाँ, शरीर छे ते शू छे जीव अने पुद्गलनो संयोग जनित पर्याय छे, कौन सी पर्याय कहेंगे उस, असमान जातीय द्रव्य पर्याय, दो जाति के द्रव्य है, समान जाति के नहीं है। ये पेन देख रहे हैं, ये तो अनेक अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, ये सभी समान द्रव्य है, परंतु यहाँ क्या बात है, एक जीव द्रव्य और अनंत पुद्गल परमाणु, इनके संयोग से बनी है, उसको कहेंगे असमान जातीय द्रव्य पर्याय। यहाँ शरीर और जीव इनका संयोग हुआ है, शरीर की तो बात अलग है, यहाँ जीव अने पुद्गलना संयोग पर्याय, अने धन धान्यादिक छेते पुद्गलना परमाणुनो स्कंध पर्याय छे, उसको क्या कहेंगे, समान जातीय द्रव्य पर्याय। यहाँ शरीर छेते लिखा है, परंतु शरीर से भी मनुष्य है वो ऐसा लिखे तो चलता, क्योंकि हम अकेले शरीर की बात नहीं है ना, मनुष्य है वो क्या है, जीव और पुद्गल का संयोग है, यानी शरीर का और जीव का वहां संयोग है। एटले तेनु मळवु विखराव नियम थी अवश्य छे, यानी जिसका संयोग है उसका वियोग अवश्य होगा। संयोग हुआ ना, क्या बताता है, संबंध कहो या संयोग कहो, ये शब्द ही बताता है कि यहाँ एक से दो अलग अलग या एक से अनेक चीजें है, तभी तो संबंध कहेंगे, एक ही होता तो संबंध शब्द ही नहीं आता। जैसे मेरा मेरे से क्या संबंध हो सकता है, मेरा मेरे भाई के साथ, मेरे पुत्री के साथ, मेरे पति के साथ, फिर वो कहेंगे ना पति पत्नी संबंध है या भाई बहन संबंध है, संबंध कहेंगे तो दो बातें हो जाएगी, दो होगी अनेक भी होगी। तो जिसका जिसका संयोग है वहां वियोग अवश्य है। तो कहते हैं छता ऐसा होने पर भी तेमा स्थिरता नी बुद्धि करे छे, बुद्धि का अर्थ क्या लिया हमने, बुद्धि ने मान्यता, मिथ्या मान्यता कैसे करते हैं, तो स्थिरता नी बुद्धि करे छे ने, यह स्थिर हो ऐसी वहां मान्यता कर देता है। एज मोह जनित भाव छे, यह भाव कैसा है, मोह जनित, जनित ने मोह से उत्पन्न हुआ भाव है। माटे वस्तु स्वरूप जानी तेमा हर्ष विषाद आदि रूप न थऊ, ये जो बारह ही अनुप्रेक्षा है वो किस संबंधी है, चिंतन वस्तु स्वरूप के बारे में चिंतन है। वस्तु स्वरूप यानी आत्मा का तो स्वरूप है ही है, पर वस्तु का और आत्मा का क्या संबंध है, उसका संयोग वियोग कैसे होता है, पर्याय कैसी है, पर्याय अनित्य है आदि जो कुछ बातें है, ये पूरा लोक का क्या स्वरूप है, कर्म का कैसा उदय आदि होता है, कैसे संवर होता है, कैसी निर्जरा होती है, सभी के बारे में जो वस्तु स्वरूप का चिंतन है उसी को यहाँ बारह भावना में बताया है। तो वस्तु स्वरूप जैसी जो वस्तु है वैसा जानेंगे तो रोना आएगा ना, क्या होना चाहिए, उसमें हर्ष विषाद का कोई सवाल ही नहीं है। यही बात कहना चाहते हैं कि वस्तु स्वरूप जाने तेमा हर्ष विषाद आदि रूप न थऊ, न थऊ तो ये उपदेश की भाषा है, वस्तु स्वरूप जान लेते हैं तो उसमें ना कोई हर्ष है ना विषाद है, वो तो जो है वो है, वो जानने में बिल्कुल निराकुलता की प्राप्ति होती है। सच्चे सुख की प्राप्ति। ये हर्ष विषाद जो है, ये जो जिसको हम लौकिक में कहते हैं, जो हर्ष है ना वो सुख है ही नहीं, दुख ही है, उसमें हम सुख की कल्पना कर लेते हैं। अब ये जो भावार्थ हुआ इसके ऊपर अभी
देखो,
भावार्थ
पे देखने के पहले हम ये अर्थ को दोबारा देखेंगे। यहाँ क्या कहा है, कोई पन वस्तु शाश्वत न थी। क्या लिखा, क्या ये बात सही हो सकती है? देखो, जो एकांती जीव है, जिसको वस्तु अनेकांतात्मक है, इसका ज्ञान नहीं है, वो तो चौंक जाए, क्या बात करते हैं, वस्तु शाश्वत न थी। बात यहाँ ये बता रहे हैं, परिणाम स्वरूप थी तो वस्तु शाश्वत न थी, कोई पन वस्तु, यानी पर्याय की अपेक्षा से जब हम द्रव्य को देखते हैं तो हर समय पर्याय नई नई उत्पन्न होती है और पुरानी पलटती है, मतलब नष्ट हो जाती है। तो पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो द्रव्य शाश्वत है नहीं, इसलिए उसे अनित्य कहा है। लेकिन जिस समय पर्याय में या द्रव्य में अनित्यता है, उसी समय द्रव्य में नित्यता है, और वह उसके स्वभाव की अपेक्षा से, ध्रुवता की अपेक्षा से या द्रव्य की अपेक्षा से। इसलिए उन्होंने पहले क्या लिखा कि जे कहीं उत्पन्न थयो, तो जीव कह रहे उत्पन्न थयो छे बेन, अनादिति उत्पन्न छे। हाँ, आपका कहना है ये जो उत्पन्न होता है वह द्रव्य हो ही नहीं सकता है। क्या कहा, तो ये ऐसी लोगों की मान्यता है ना, क्या मान्यता है, भगवान ने विश्व को बनाया हा? तो मुझे आप कहो, तो जब विश्व नहीं था तो ये भगवान कहाँ रहते थे हा? और ये सारा रॉ मटेरियल लगा, जैसे आपने को बिल्डिंग बांधना है, सीमेंट लाना पड़ता है, ईंट लानी पड़ती है, पत्थर लाने पड़ते हैं, तो ये रॉ मटेरियल जो था वो कहाँ से लाया, ख्याल में। लोग क्या मानते हैं कि किसी ने विश्व बनाया, तो यहाँ द्रव्य तो अनादि का है, वह स्वयं भू है जिसको कहते हैं, उसका निर्माण करता कोई नहीं है। तो इसलिए क्या बता रहे हैं, जे उत्पन्न थयू तेनो नाश थई जाए छे, ते उत्पन्न थाय छे ते द्रव्य उत्पन्न थतु नथी, पण पर्याय उत्पन्न थाय छे। अने पर्याय नो काल केवड़ो छे भाई, पर्याय कितने समय तक टिकती है? हाँ हाँ, जोर से बोलना, एक समय। तो इतना डरते क्यों हो, एक समय बताने के लिए असंख्य समय निकल गए भाई। हाँ, तो कहते हैं पर्याय इसी को कहेंगे कि जो एक क्षण मात्र, एक समय मात्र टिकती है। तो पर्याय की अपेक्षा से जब हम द्रव्य को देखते हैं तो द्रव्य टिकता ही नहीं है, लेकिन द्रव्य को द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो द्रव्य तो नित्य कायम टिकने वाला है। और मैं कौन हूँ, मैं भी एक अनंत द्रव्यों में से एक जीव द्रव्य हूँ, और जब मेरी नजर, मेरा उपयोग, मेरा कंसंट्रेशन मेरे में होगा तो अनित्य की तरफ देखने की वहां जगह ही नहीं रहेगी, क्योंकि मैं तो एक समय में मेरा उपयोग एक ही को जानेगा, या तो स्व को या तो पर को, क्योंकि यह क्षम ज्ञानी है, उसका तो एक समय में एक ही तरफ उपयोग लगेगा, भले जाने दोनों को, लेकिन उपयोग तो एक जगह लगा है। तो कह रहे हैं कि मैं द्रव्य के स्वभाव से, यानी द्रव्य की अपेक्षा से जब हमने अपने तरफ देखता हूँ तो मैं तो नित्य ही हूँ। तो पर पदार्थों को या पर्यायों के तरफ देख देख कर तू क्यों वृथा अकुलता करता है, ऐसा अपने को समझाना है भाई, ख्याल में आया। तो द्रव्य दृष्टि आपा लखो, ऐसा कहा ना जयचंद जी छाबड़ा ने, क्या कहा कि द्रव्य दृष्टि से आपा याने स्वयं को लखो, याने देखो जानो, तब पता लगेगा कि पर जय नए करी गौण। ये पर्याय अर्थिक नए जो है उसको गौण करके अपने तरफ देखो, यानी यहां अनित्य भावना में भी यही बात बारंबार बताई जा रही है। कि जो उपजता है वो विनसता है, उसके तरफ हमें नहीं देखना है। जो कायम त्रिकाल टिका हुआ है उसमें अगर हम एकाग्र हो जाते हैं तो पर्याय में भी वैसी, क्या कहते हैं, स्थिर पर्याय, मतलब पर्याय तो स्थिर नहीं रहेगी, ये स्वरूप जो है स्थिर वो ज्ञान में आएगा और वहां कोई आकुलता नहीं रहेगी। देखो हम जब सिद्धांत प्रवेशिका सीखते थे ना, उस समय हमने क्या देखा था कि ये मिथ्या दृष्टि जीव जो है, जब जब उसकी दृष्टि पर ऊपर यानी पर और पर्याय पर जाती है तब क्या होता है सब? हाँ जी, राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। और राग द्वेष कैसे हैं? आकुलतामय है ना। तो राग में पुण्य राग भी लेना हो क्या बेन, तो पुण्य करने से क्या होगा? आकुलता होनी है, ख्याल में आया? तो फिर सोचो स्वाध्याय करना कि नहीं। अरे भगवान, तू सुबह में नहीं रहेगा तो क्या पाप में जाएगा? हाँ, वो तो अत्यंत आकुलत है। ये बात क्यों बता रहे हैं कि भाई हमें ना पुण्य में रुकना है ना पाप में, लेकिन इनसे जुदा ऐसा जो शुद्ध स्वभाव है, उस शुद्ध स्वभाव में हम जाएंगे तो हमें पर्याय में भी शुद्धता प्रकट होगी। अब देखते हैं आगे, ये तो आपको ख्याल में आ गया ना। चे काई उत्पन्न थयूं तेनो नियम थी नाश थाई छे, अर्थात, अर्थात का क्या अर्थ बताए? परिणाम स्वरूप थी तो वस्तु, आगे लिखा कोई पन वस्तु, यानी सारे विश्व के अनंत पदार्थों की, द्रव्यों की बात कहते हैं, पर्याय रूप से तो वो शाश्वत नहीं है। और इसके लिए आगे लिखा कि वस्तु के पीछे सामान्य विशेष स्वरूप छे, यानी सामान्य और विशेष यानी क्या? उत्पाद व्यय, ये विशेष में क्या और सामान्य में ध्रुवता गई, यानी वो ध्रुव भी है और अध्रुव भी है, नित्य भी है और अनित्य भी है। इस तरह से अभी आपने, हमने ये सब देखा। अब हम आगे जाते हैं, गुरुदेव क्या कहते हैं उसकी बात देखेंगे। जे काय उत्पन्न थयूं तेनो नियमती नाश थाय छे, क्या कहा? अर्थात परिणाम स्वरूप थी तो कोई पन वस्तु शाश्वत नहीं। जुओ आ वैराग्य नी भावना, समय सारमा पण वैराग्य भेगोज छे, त्यां कयूं छे के सम्यक ज्ञान साथे वैराग्य पन भेगोज छे। जेटलो स्वरूप मां ठर्यो तेटलो परद्रव्य थी विरक्त थयो तेनु नाम वैराग्य छे, क्या कहा? ये वैराग्य किसको कहा? कि जो अपने स्वरूप में रुक जाता है वहां उसे पर पदार्थों के प्रति कोई लगाव नहीं रहता है, कोई उसमें एकत्व बुद्धि नहीं रहेगी, उसे वैराग्य कहा। और हमारा घर जल जावे तो कोई बात नहीं, आज 10 करोड़ का घर जल गया कोई बात नहीं, 2 साल में 20 करोड़ कमाऊंगा तो उसको कितना वैराग्य आ गया? ख्याल में है ना। तो वैराग्य तो ये कहेंगे कि पर पदार्थों के प्रति अपने जो पहले लगाव था वो स्वरूप में लीनता के कारण नष्ट हो गया, वैराग्य कहो या दूसरी भाषा में वितरागता कहो, यहां उस अर्थ में हम ले सकते हैं। क्या कहा? देखो देखो, आ वैराग्य नी भावना छे, समय सार मापन वैराग्य भेगोज छे, यानी समय सार जो शास्त्र है उसमें भी ये बात बताई है, क्या कहूं छे के सम्यक ज्ञान साथे वैराग्य पन भेगोज छे, जेटलो स्वरूप मां ठर्यो तेटलो परद्रव्य थी विरक्त थयो तेनु नाम वैराग्य छे। आ वैराग्य भावनाओ चैतन्य ने आनंद नी जनेता छे। जनेता का अर्थ समझ में आया ना, गुजराती शब्द आप तो जानते होंगे। अनाकुल शांति आनंद नो कंद आत्मा छे, तेनी भावना मा वीतरागी आनंद नी शांति उत्पन्न थाई छे, एकलो शुभराग थाय ते काय आनंद दायक नथी। आ भावनाओ भव्य जीवों ने आनंदनी जननी छे, ए वात દરેક ભાવનામાં લાગુ પાડવી, દ્રવ્યને લક્ષમાં રાખીને આવી ભાવના ભાવે તેને આનંદને શાંતિ પ્રગટે છે. એ વિશેષ વાત ધ્યાન મેં રખની ચાહીએ કે હમારા લક્ષ્ય કહાં હોના ચાહીએ કે સ્વસ્વરૂપ મેં, સ્વદ્રવ્ય મેં. તો કે તે દ્રવ્યને લક્ષમાં રાખીને આવી ભાવના ભાવે તેને શું થાય, આનંદને શાંતિ પ્રગટે છે. એકલો પર્યાયની ભાવનામાં આનંદ નથી. મારો આત્મા જ પરમાનંદ સ્વભાવથી નિત્ય છે, એ સિવાય બીજા કોઈ સંયોગો નિત્ય રહેનારા નથી. જો ભાઈ, આવા સ્વભાવની વૈરાગ્ય ભાવના પણ અનંતકાળમાં દુર્લભ છે. કેવું અનંતકાળમાં દુર્લભ છે? આજ તક કભી સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્ત નહીં કિયા હૈ ના, અનંતકાલ સે એસે હી એસા ઘૂમ રહે. ઓર જિસકે સમ્યક તો હૈ ઉસકી ભાવના સહી યથાર્થ હો સકતી હૈ, ઇસલિયે કહે રહે હૈ કે આવા સ્વભાવની વૈરાગ્ય ભાવના પણ અનંતકાળમાં દુર્લભ છે. આવી ભાવના ભાવવા જેવી છે. અજ્ઞાનીઓ સંસારની અને વિકારની ભાવના ભાવે છે, તેમાં કાંઈ શાંતિ નથી. સંસારની અને રાગદ્વેષ કે પરિણામ કર રહે, વિકાર કર રહે, યે ચાહીએ વો ચાહીએ, ઇસકે બિના નહીં ચલે. ભગવાન શ્રી તીર્થંકર દેવ માતાના પેટમાં આવે ત્યારે પણ સમ્યક દર્શન સહિત હોય છે. એ જો વાત હે ને, એ હમારે કેવલ કર્મભૂમિ મેં, ભરતભૂમિ મેં એ પોસિબલ હૈ. ભરતભૂમિ ઓર ભરત ક્ષેત્ર ઓર ઐરાવત ક્ષેત્ર મેં, લેકિન વિદેહ ક્ષેત્ર મેં એસા હો સકતા હૈ કે કોઈ તીર્થંકર તીન કલ્યાણક કે સાથ હો સકતે હૈ, દો કલ્યાણક કે સાથ હો સકતે હૈ. નહીં સમજ મેં આયા? આપકો ધ્યાન મેં આયા બેન? નહીં નહીં, કોઈ વાત નહીં. અમારા રશ્મિબેનને તો ખ્યાલમાં આવ્યા ને. દેખો દેખો, અભી યહાં જો ભરતભૂમિ હૈ, ભરત ક્ષેત્ર જિસકો હમ કહેતે હૈ, વહાં જો તીર્થંકર હોતે હૈ, વે સારે કે સારે તીર્થંકર પાંચ કલ્યાણક કે સાથ હી હોતે હૈ. તો એ પાંચ કલ્યાણક કે નામ તો હમ પહેલે જાણે ના ભાઈ, ખાલી પાંચ તીન દો ને એસા, એ થોડી હો પાનર હમને કહે. તો પાંચ કલ્યાણક કે નામ જાણતે બેન આપ? બોલો બોલો બોલો. ગર્ભ કલ્યાણક, જન્મ કલ્યાણક, અચ્છા તપ કલ્યાણક, હા આગે તપ કલ્યાણક કે બાદ, હા હા બોલો, હા કિતને હો ગયે? ચાર. હા ઓર ફિર જ્ઞાન કહાં ગયા? એક 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 મિનિટ બોલને દો ઉનકો, અરે ઉનકો બોલને દો ભાઈ, એક ઇનકો તુમ ફિર સે. ગર્ભ કલ્યાણક, જન્મ કલ્યાણક, ફિર દીક્ષા કલ્યાણક, ફિર તપ કલ્યાણક. અરે આપને અભી બતાયા ના બેન? હા ફિર કોણ સા આયા? જ્ઞાન કલ્યાણક. હા ઓર બાદ મેં, હા દેખો દેખો આપને બસ. હા જી હા જી, કોઈ વાત અભી ઉનકો શબ્દ માલુમ નહીં, લેકિન ભાવ ભાષણ તો હો રહા હૈ. દેખો દેખો અભી યહાં, અભી આપ કુકમા ગયે થે ના, ઉધર યે સબ દેખ કે આયે કે નહીં? ભૂલ ગઈ ઇતને મેં, 15 દિન મેં, કિતના દિન હો ગયા ક્યા માલુમ, જો ભી હોવા હોગા. દેખો દેખો, પહેલે તો ગર્ભ કલ્યાણક, યાને યહાં ગુરુદેવ યહી બાત બતા રહે હૈ કે ગર્ભ મેં સમ્યક દર્શન સહિત તીર્થંકર જીવ હોતે હૈ, અવતરતે હૈ ગર્ભ મેં ભી સમ્યક્ત્વ કે સાથ હૈ. યે પહેલી બાત. દૂસરા હોતા હૈ જન્મ કલ્યાણક, તીસરા હોતા હૈ દીક્ષા કલ્યાણક કહો યા તપ કલ્યાણક કહો, દોનો કા અર્થ એક હી હૈ. ઓર ચોથા હોતા હૈ કેવલ જ્ઞાન કલ્યાણક. જ્ઞાન કલ્યાણક આપ શોર્ટ મેં બોલો, અચ્છા વાંધા નહીં. ઓર પાંચવા હોતા હૈ મોક્ષ કલ્યાણક. અભી વિદેહ ક્ષેત્ર મેં એસે કોઈ જીવ હોતે હૈ જો હમકો માલૂમ હોના ચાહીએ કે જબ યહ જીવ મુનિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે તબ ભી ઉસકો તીર્થંકર ગોત્ર બંધતા હૈ. કઈ જીવો કો યહાં નહીં, વિદેહ ક્ષેત્ર મેં. ઓર કઈ એસા હોતા હૈ કે મુનિ હોને કે પહેલે ભી उनके तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है, तो उनके तो गर्भ में
अब
तो
कहने में बिगिनिंग होता है, ऐसा कहो तो अच्छा है। तीर्थंकर प्रकृति बांधना जीव कब प्रारंभ करता है ये बात आप बताना चाहते हैं?
ठीक है ठीक है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुण स्थान से भी चालू होता है। आपको मालूम है ऐसा चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर गोत्र किसी ने बांधा है? आपके पहचान का है, मेरे को मालूम है, आप जानती है? नहीं, तुम्हारे मित्र को भूल गई? हाँ बोलो भाई। अरे भाई को बोला, बहन को कहाँ बोला मैं? भाई लोगों को सोचने देना बहन, जरा हमारा दिमाग है ना उसको स्ट्रेच करेंगे ना तो हम जो बात बोलेंगे पकड़ लेंगे, और ऐसा ही बैठा होगा कितना भी बाल डालो दीवार के जैसा वापस आएगा। क्यों, श्रेणी के राजा को जानते हैं कहाँ है वो? नरक में। कह तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे ना वो चौथे गुणस्थान वाले हैं, क्योंकि हम निश्चित जानते हैं नरक में चौथे गुणस्थान से ऊपर का गुणस्थान होता ही नहीं है। हाँ, और वो नरक में जाने वाले थे तो यहाँ पर भी चौथा ही गुणस्थान था, तो वह भी तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं, तो उसको दीक्षा कल्याण होगा। अगर ऐसा कोई विदेह क्षेत्र का जीव है कि जिसने चौथे पांचवे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति बंधना चालू किया, तो उसके तो गर्भ कल्याणक नहीं होगा और जन्म तो हो गया ना भाई, तो दोनों कल्याणक नहीं होंगे, तो उनको दीक्षा कल्याणक होगा, ज्ञान कल्याणक होगा और मोक्ष कल्याणक होगा। और ऐसे भी कोई जीव होंगे मुनि दीक्षा ले ली है और मुनि अवस्था में तीर्थंकर गोत्र बांधना चालू करते हैं, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, तीर्थंकर गोत्र कहते हैं तीर्थंकर नाम कर्म चौथे गुणस्थान से आठवें गुणस्थान तक ही बंधता है, तो चौथा पांचवा छठा सातवां और आठवें में कुछ भाग तक, वो बाद में उसका बंध रुकता है। और उदय कब आता है बेन? जय बेन, उदय कब आता है तीर्थंकर कर्म का? उदय कब आता है कौन से गुणस्थान में? अरे नक्की करो, चौदह ही गुणस्थान है हमारे पास। हाँ, आप नक्की करो बेन। अच्छा बारहवें। हाँ, अरे अरे कोर कोर, ये हमारी सुशीला उधर बैठती, अच्छा है।
उन्होंने पहले बोल चुके थे।
अरे करने दो ना कन्फर्म, मैं क्या कहता हूँ, ये बात ऐसी कन्फर्म नहीं होता है ना तो पलटते हैं, कोई बात नहीं, हमें तो सबको पक्का करना है ना बिन, सब लक्ष्मी बन जावे तो लक्ष्मी का क्या महत्व रहेगा, इसलिए वो बोलती नहीं नहीं, नहीं।
यहाँ ऐसे जीव की बात बता रहे है।
हाँ।
कि जो तीर्थंकर प्रकृति बांध कर उसी भव में तीर्थंकर होने वाले।
हाँ।
क्योंकि ऐसे बांधते तो बहुत जीव है, परंतु उनका और एक देव का या नारकी का भव बाकी करके फिर बाद में वो गर्भ में आते हैं, तो ही उनके पांच कल्याणक होते हैं।
और
उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति बांधना शुरू किया और उसी भव में उसका उदय हुआ और मोक्ष गए, तो उन जीवों की अपेक्षा
पॉसिबिलिटी। हाँ। केवल विदेह क्षेत्र में ही है, अपने भरत क्षेत्र में। हाँ, पांच कल्याणक ही होंगे सभी तीर्थंकरों के ख्याल में, विदेह में ये शक्यता है कि तीन, किसी के चार कल्याणक तो होंगे कि नहीं, ऐसा मेरा सवाल है। हाँ बिन, नहीं क्यों? हाँ ठीक है, होंगे तो पांचों, या तो तीन या तो दो, किसको एक कल्याणक मोक्ष ख्याल में आया? तो अभी यहाँ गुरुदेव जो बात बताते वो समझने के लिए हमें इतना लंबा दूर पीछे जाना पड़ा। देखो अभी क्या कह रहे हैं, हो गया, एक लाइन तो पढ़ लेता हूँ। भगवान तीर्थंकर देव माताना पेटमा आवे त्यारे पन सम्यक दर्शन सहित तो होय छे। ये यहाँ तक ही रुकते हैं क्योंकि अभी अपना समय हो गया है। यही बात मैं कह रहा था कि यह बात केवल भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही होगी, क्योंकि यहाँ तीर्थंकर पांचों ही कल्याणक सहित होते हैं, बस बाकी की बात बाद में। कल जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकण मो सदा देता हो।